ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷாவாசிய உபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஜெகதீஷ் புரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
அத்தியாத்ம தீர்த்தி வித்யாபவன் प्रतिदिन चल रहे इस ज्ञान प्रवाह में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावासी उपनिषद का विचार मंथन कल से आरंभ हुआ था। इसके मंगलाचरण का हम लोग चिंतन करने जा रहे थे। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं मानी गई है, कर्णव शाखा और माध्यमदिनी शाखा। जिस उपनिषद के ऊपर हम लोग विचार करने जा रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 39वां अध्याय जो कण्व शाखा है उसकी उपनिषद है। वे माध्यमदिनी शाखा में भी ये उपनिषद आती है, परंतु वहां में और यहां थोड़ा थोड़ा कहीं अंतर है। ये आचार्य शंकर ने जिस पर भाष्य लिखा है ये कण्व शाखा है, और कण्व शाखा का ये उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, कलेवर की दृष्टि से उपनिषद कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है, सिर्फ 18 मंत्र हैं, लेकिन अर्थ विस्तार को देखते हैं तो यूं समझ लो कि संपूर्ण महाभारत का जो पोथा व्यास जी महाराज ने रचा है उसका आधार यही उपनिषद है। पूरा महाभारत ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ इस एक ही उपनिषद का विस्तार है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। जैसा कि कल आप लोग सुन रहे थे, किसी भी ब्रह्म विद्या आदि को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में शांति पाठ का विधान है। पौराणिक कथाओं में जिसको हम लोग मंगलाचरण बोलते हैं, उपनिषद विद्या में उसको शांति पाठ बोलते हैं। प्रत्येक उपनिषद का अपना अपना शांति पाठ होता है। इस उपनिषद का जो शांति पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थ की दृष्टि से अत्यंत गंभीर है और शब्दों की दृष्टि से इतना आसान है कि हर व्यक्ति को कंठस्थ होने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं आती है। एक ही शब्द की इतनी आवृत्ति होती है जिसका विचार कल हम लोग कर रहे थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत सुंदर मंत्र है। देखो, कोई भी आध्यात्मिक या वैदिक कार्य प्रारंभ किया जाता है, सबसे पहले परमात्मा को ओंकार के द्वारा स्मरण किया जाता है। गीता में लिखा है कि तस्माद् ओमित्यो अदाहित्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तान्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादी नाम। जो भी वेदवादी लोग होते हैं, यज्ञ दान तप स्वाध्याय आदि जो भी क्रिया आरंभ करते हैं, प्रारंभ में ओम का उच्चारण करके अपनी वाणी, अपना मन, दृष्टि आदि को स्थिर करते हैं। परमात्मा के यद्यपि वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। परमात्मा शब्द भी एक व्यवहार के लिए ही है। जो वाणी का विषय ही नहीं है उसको वाणी के द्वारा कैसे बताया जाएगा, परंतु फिर भी शब्दों से ही तो उसको लक्षित कर पाएंगे। अनेक नामों में से सर्वश्रेष्ठ यदि कोई नाम है तो ओम है परमात्मा का। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब आप प्रारंभ करते होंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है ओम ही आता है। ओम विश्वम विष्णु वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, ओम से ही शुरू हो रहा है। कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो ओम बोल करके किया जाता है। इसीलिए कि यह परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम। ओंकार स्वरूप जो परमात्मा है, अदः पूर्णम पूर्ण मदह। अदह शब्द का अर्थ होता है परोक्ष रूप से जिसको हम लोग मानते हैं, वह परमात्मा पूर्ण है। पूर्णम इदम, इदम शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई पड़ रहा है, ये जो दिखाई पड़ रहा है इदम पूर्णम, यह भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही इस पूर्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का पूर्ण ले लेने पर भी वो पूर्ण का पूर्ण ही शेष रहता है। कितना सुंदर अर्थ है इसका। वैसे तो कुछ भी अर्थ में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब समझेंगे तो आश्चर्य लगेगा, वह परमात्मा पूर्ण है और इदम जगत पूर्णम, परमात्मा पूर्ण है और ये जगत भी पूर्ण है। ये जगत पूर्ण कहां से आया? बोले उस पूर्ण परमात्मा से ही जगत का उद्गम हुआ है, प्राकटन हुआ है। परमात्मा पूर्ण है और परमात्मा से प्रकट हुआ ये जो जगत है, ये भी पूर्ण ही है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय। वो जो परमात्मा पूर्ण है उसमें से इस पूर्ण जगत को अलग कर देने पर प्रश्न खड़ा होता है कि फिर वो तो उसका पूरा का पूरा ही पूर्ण इधर आ गया, तो वो तो कुछ भी नहीं रहेगा फिर। तब कहते हैं कि नहीं, पूर्णम अवशिष्यते, वो पूर्ण ही शेष रह जाता है। उस पूर्ण का पूर्ण ले लेने पर भी वो पूर्ण ही होता है। बड़े बड़े चिंतक इस मंत्र को देखकर, इस पर विचार करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कितना विलक्षण मंत्र है कि देखो परमात्मा पूर्ण है। यो समझ लो कि एक घड़े में पानी भरा हुआ है, वो पूरा का पूरा घड़ा पानी से पूर्ण है, कह सकते हैं पूरा पूर्ण भरा हुआ है। अब एक दूसरा घड़ा है उसमें पानी न हो, उसका सारा पानी उस घड़े में डाल दिया जाए जो खाली पड़ा हुआ था, तो जिस घड़े का पानी दूसरे घड़े में खाली किया गया, उस घड़े में कितना पानी रहेगा? खाली होगा कि नहीं? वो पानी तो इसमें आ गया। लेकिन मंत्र इतना विलक्षण है, कहते हैं परमात्मा पूर्ण ही है और उस पूर्ण से ही ये पूर्ण जगत पैदा हुआ। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण पूर्ण से ही पूर्ण पैदा हो रहा है। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब परमात्मा पूर्ण है, उससे पूर्ण जगत अलग हो गया, निकल गया, तो वो तो फिर समाप्त ही हो गया। वहां पूर्णता किस बात की रह गई? उसकी पूर्णता तो सारी की सारी जगत में आ गई। तब यहां कहते नहीं, पूर्ण से पूर्णम आदाय, उस परमात्मा के पूर्ण से इस पूर्ण जगत को ले लेने पर भी वो परमात्मा पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। उसमें कोई भी न्यूनता नहीं आती, वो घटता नहीं है, वो अपने स्वरूप में पूर्ण रहता है। जगत भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। लेकिन केवल शब्दों से शायद समझ में आए, ये इसी प्रकार से अर्थ करना पड़ेगा। आप लोग देखिए, ये जो बीज होता है, जैसे वट वृक्ष का बीज है, पीपल का बीज है, कोई मक्का जो बाजरा फसल का बीज है, उस बीज में जो बीजत्व शक्ति होती है, उस बीज के अंदर ही पूरा का पूरा वट वृक्ष के संस्कार छुपे हुए रहते हैं। तो वो जो बीजत्व शक्ति है बीज के अंदर, वो पूर्ण होगी कि अपूर्ण होगी? पूर्ण ही होगी। अब जैसे उस बीज को जमीन पर डाल दिया जाए और वो अंकुरित होने पर उसमें से एक पेड़ तैयार हुआ, तो वट वृक्ष जो तैयार हो रहा है वो उस पूर्ण बीज से ही तो पैदा हुआ। अब पूर्ण बीज से पैदा होने पर वट वृक्ष जब बन गया तो बीज कहां रह गया? बीज तो नष्ट हो गया, बीज तो रहा ही नहीं ना, वो तो वट वृक्ष के रूप में आ गया। चलो वहां तो बीज में विकार पैदा हो गया है, तो क्या इसी प्रकार से वो परमात्मा जगत का आधारभूत बीज हो और उससे जगत पैदा होने पर उस परमात्मा रूपी बीज में विकार पैदा होगा? एक प्रश्न खड़ा होता है। ऐसा उसमें विकार पैदा नहीं होता है। इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण आप दूसरा देखिए। एक मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती की जो लौ है वो पूर्ण है अपने आप में, अब उस मोमबत्ती से आपने दूसरी मोमबत्ती टच करके और मोमबत्ती जला दी, वो जो दूसरी जलाई गई मोमबत्ती वो भी अपने आप में पूर्ण प्रकाश दे रही है। जितना प्रकाश पहले वाली मोमबत्ती दे रही थी पूर्व में जलती हुई, उससे अलग जला करके तैयार की गई मोमबत्ती भी उतना ही प्रकाश दे रही है। अब उस पहले वाली मोमबत्ती से इस तरह की आप हजार मोमबत्तियां भी जला देंगे तो क्या जो प्रथम मोमबत्ती जल रही थी उसके प्रकाश में कोई कमी आएगी, कोई न्यूनता आएगी? और उस पूर्ण जलती हुई मोमबत्ती प्रकाश से आप हजार मोमबत्तियां जला देंगे तो क्या उस पहले वाली मोमबत्ती का जो प्रकाश है हजार भाग में विभक्त हो गया? जितने भी मोमबत्तियां जलाई जाएंगी वो सब अपने आप में पूर्ण ही होंगी कि नहीं? तो एक जलती हुई पूर्ण मोमबत्ती से अनेक मोमबत्तियां जल जाने पर भी मूल स्वरूप जो मोमबत्ती जल रही थी उस वो पूर्ण की पूर्ण ही रहती है, वो घटती नहीं, उसकी लो उतनी ही होती है। दीपक का उदाहरण, मोमबत्ती का उदाहरण आप कुछ भी दे सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने देखा एक बीज में से वटवृक्ष तैयार हुआ, अब उस वटवृक्ष के ऊपर जब फल लगे, फल लगने पर फलों के ऊपर जो बीज तैयार हुए, एक वटवृक्ष पर कितने बीज लगते हैं शायद ही कोई गिन पाएगा, लाखों करोड़ों बीज तैयार हो जाते हैं। अब लाखों करोड़ जो बीज तैयार हो रहे हैं उन टोटल जितने भी बीज हैं उन बीजों में जो अंकुरत्व की शक्ति है, एक नया वटवृक्ष खड़ा करने की जो सामर्थ्य शक्ति है, क्या एक ही बीज से पैदा हुआ जो वटवृक्ष है उस प्रथम बीज में जो बीजत्व शक्ति थी जब वो लाखों बीजों के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो क्या वो प्रथम बीजत्व शक्ति उसकी कम हो जाएगी? या जो लाखों बीज तैयार हुए हैं अब उनमें बीजत्व शक्ति की न्यूनता आएगी? नहीं, वो टोटल बीजों में उतनी ही शक्ति होगी जितनी प्रथम बीज में शक्ति थी। वो प्रत्येक बीज वैसा ही वटवृक्ष खड़ा करने का सामर्थ्य रखता है। तो पूर्णम अधः पूर्णम इदम्, अधः जो परमात्मा है वो पूर्ण ही है और उस पूर्ण परमात्मा से ऐसे ही सारा जगत उत्पन्न हो रहा है। जैसे वो अनेक मोमबत्तियां आपने एक मोमबत्ती से तैयार कर ली, जगत कैसा है? जगत भी पूर्ण ही है। परमात्मा पूर्ण है तो जगत भी पूर्ण का पूर्ण ही होगा, उसमें कमी नहीं है। और उसका पूर्ण से पूर्णम आदाय, उस पूर्ण परमात्मा का पूर्ण देने पर भी, माने जैसे जलती हुई पूर्ण मोमबत्ती का प्रकाश दूसरी मोमबत्ती में पूर्ण रूप से ले लेने पर भी पहले वाली मोमबत्ती का प्रकाश कम नहीं हुआ था, ऐसे ही परमात्मा से पूर्ण जगत उत्पन्न होने पर भी वो परमात्मा अपने आप में पूर्ण ही रहता है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण का पूर्ण ले लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि परमात्मा भी पूर्ण है और परमात्मा में प्रतीयमान ये जो जगत है, ये सारा का सारा संसार, ये भी पूर्ण ही है। जो परमात्मा है उससे जगत भिन्न नहीं, ये भी पूर्ण है। हमेशा आप लोग वेदांत श्रवण करते हैं, एक प्रश्न आपके मन में शायद खड़ा हो जाए कि महाराज, एक तरफ हम लोग वेदांतियों के मुंह से सुनते हैं कि ये जो जगत है ये सत्य नहीं है, ये जो जगत है ये मिथ्या है, सत्य तो एक परमात्मा ही माना जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इधर मंत्र बोल रहा है कि परमात्मा पूर्ण है और जगत भी पूर्ण है, तो एक ओर तो वेदांती लोग जगत को मिथ्या बोलते हैं और दूसरी ओर इस जगत को पूर्ण भी बोल रहे हैं। दोनों की संगति कैसे होगी? दोनों वाक्यों को एक साथ कैसे मिलाएंगे? ये तो तम प्रकाश की भांति परस्पर एक दूसरे के विरोधी हो गए। एक में तो मिथ्या बताया जा रहा है और एक में जगत को पूर्ण करके बताया जा रहा है, यह कैसे संभव होगा? वहां पर दृष्टि भेद से ऐसा किया गया है। दृष्टि भेद है, एक जगत का नाम रूप को देख रहा है और एक जगत के अस्थि भांति प्रिय रूप को देख रहा है। ये जो संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत है ये पांचों का संयोग से प्रतीयमान है, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। उसमें अस्ति भाति और प्रिय ये उस परमात्मा का पूर्णत्व है जगत के अंदर। परमात्मा अस्ति भाति प्रिय रूप से विद्यमान है, जिसको हम लोग सत चित और आनंद करके बोलते हैं। सच्चिदानंद भगवान बोलते हैं, जिसको आनंद बोलते हैं उसको यहां पर प्रिय संज्ञा दे दी गई है। तो अस्ति भाति प्रिय माने सचित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उस सचित आनंद स्वरूप परमात्मा में ही नाम और रूप की परिकल्पना हो रही है। नाम और रूप जो होता है व्यवहार तो उसके बिना चल नहीं सकता, लेकिन यदि उसके मूल स्वरूप को खोजने लगेंगे तो सचित आनंद को छोड़कर, उस अस्थि भाति प्रिय को छोड़कर और नाम और रूप कोई स्वतंत्र वस्तु हो ही नहीं सकती है। वेदांत की प्रक्रिया में ये बात आप बहुत बार सुन चुके होंगे। उदाहरण के लिए ये जो पुष्पहार मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसका नाम है पुष्पहार है। ये पुष्पहार इसका नाम है, और एक धागे में पिरोए ये पुष्पों की एक आकृति आप देख रहे हैं, आकार है। इस आकार को बोलते हैं रूप, और पुष्पहार यह है इसका नाम है। अब जरा देखिए इसका जो मेटेरियल है, पुष्प और धागा। पुष्प और धागे को अलग कर दें तब ये बताइए पुष्पहार क्या चीज रहेगी, ये आकृति कोई रहेगी तो न तो ये आकृति रहने वाली है। पुष्प और धागों को अलग कर देने पर आकृति भी नहीं रहेगी, रूप भी नहीं रहेगा, और पुष्पहार नाम की कोई संज्ञा भी नहीं रहेगी, इसका नाम भी नहीं होगा। किसी भी चीज में आप देख लीजिए, ये पुस्तक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसका नाम है पुस्तक। अब पुस्तक किसको बोलते हैं, ये जो कागज का एक व्यवस्थित संग्रह है इसको आप लोगों ने पुस्तक बोल दिया है। अब ये जो पुस्तक है और इसकी एक आकृति है 4x4 की, जो भी आकृति है इसकी, अब इसकी आकृति को रूप बोलते हैं, और ये जो पुस्तक शब्द है ये इसका नाम है। परंतु इसका जो मटेरियल है कागज, यदि कागज को अलग कर दें तो पुस्तक संज्ञा किसकी रहेगी और ये आकृति किसकी रहेगी, न तो पुस्तक नाम रहेगा और न कोई आकृति रहेगी। केवल उस कागज के ऊपर ही ये प्रतीति होती है व्यवहार चलाने के लिए कि इसको पुस्तक बोलते हैं और इसकी आकृति है। नाम और रूप स्वतंत्र वस्तु नहीं होती है, इसलिए जो लोग जगत को नाम और रूप की दृष्टि से देखते हैं वो ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है, क्योंकि नाम रूप कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। लेकिन जिन्होंने नाम रूप के बजाय कारण परमात्मा पर दृष्टि डाली है, जिस पर नाम रूप की प्रतीति हो रही है, जिसके ऊपर नाम रूप का व्यवहार चलाया जा रहा है, वो परमात्मा है अस्ति भाति प्रिय रूप। तो अस्ति भाति और प्रिय रूप से तो ये जगत ब्रह्म रूप ही है, यह पूर्ण ही है। नाम और रूप की दृष्टि से जगत मिथ्या है, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने, देखने की दृष्टि का अंतर है। अब कोई इसको किस तरह से देख रहा है, महात्मा लोग एक बड़ा अच्छा उदाहरण सुनाते हैं कि कोई दो संत थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी, लेकिन उनका जो प्रचार क्षेत्र था वो अलग अलग था। एक महात्मा का प्रचार क्षेत्र था गुजरात, तो दूसरे महात्मा का प्रचार क्षेत्र था पंजाब। अब गुजरात और पंजाब की जो खान पीन की विधा है बहुत बड़ा अंतर है। अब आप देख लो, अगर गुजरात में जाएंगे तो चाय दूध आदि का गिलास देंगे तो गिलास कितना बड़ा होगा भाई, कितना बड़ा होगा वो छोटा सा गिलास, और वो भी अंदर से फिर उठा हुआ, वो भी उसमें भी धोखा है, वो छोटा सा गिलास और उसमें भी फिर यदि पूरा भर करके दे दिया जाए तो बोलते अरे 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 इतना नहीं पिया जा सकता है, तो पूरा भरा हुआ है। बताइए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, वो इतना भी नहीं पी सकते। लेकिन आप पंजाब में जाओ तो उनका जो गिलास होगा ना कम से कम 8 से 9 इंच लंबा होगा, इतना बड़ा गिलास होगा। और जब पीने के लिए दूध आदि उसमें दिया जाएगा तो पूरा का पूरा लस्सी आदि वो भर करके दिया जाएगा। खाली होता तो कहते हैं तो गिलास तुम्हारा खाली है। अब दोनों महात्मा में दोस्ती अच्छी थी तो एक बार वो महात्मा पंजाब वाले गुजरात में आए तो एक भक्त ने उनको दूध दिया गिलास में लेकर के। पंजाब वाले महात्मा ने गिलास को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा ने पूछा, अरे भैया क्या है इसमें? बोले, बापू जी तुम्हारे माटे दूध है। दूध? हाँ।